Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate
vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo. Translation, or can everybody understand English? Not everybody. So should we want Hindi translation? You sure? Is that okay? Okay, we need Kannada then. Okay, anyway. Manage. Why don't you just sit next to her and translate in her ear, into her, in her ear? Okay, you will do a Hindi translation? Okay. We probably should do that regular, if you're here. I mean, if you're here, you can do it. Okay, now we do the verse. Text number 17. Shrinvatam Swakata Krishna.
Shrinvatam Swakata Krishna.
Punya Shravana Kirtana.
Punya Shravana Kirtana.
Vidyam Taksto Hyabhadrani. Vidunoti Surit Satam.
Vidunoti Surit Satam.
Shrinvatam Swakata Krishna. Punya Shravana Kirtana.
Punya Shravana Kirtana.
Vidyan Taksto Hyabhadrani. Vidhunoti Surit Sata.
Vidhunoti Surit Sata.
Here.
Shrinvatam.
Those who have developed the urge to hear the message of.
Those who have developed the urge to hear
the message.
Swakata.
His own words.
His own words.
Krishna.
Krishna.
The personality of Godhead.
Personality of Godhead.
Punya.
Punya.
There's a mistake here. It says virtues, but it's actually virtuous. Virtuous. Shravana. Hearing.
Hearing.
Kirtanaha.
Kirtanaha.
Chanting.
Chanting.
Could you write a message to Dravida? An email message to Dravida. Tell him in this verse that it says punya, virtues, but it's supposed to be virtuous. Vidyantakstaha.
Vidyantakstaha.
Within one's heart.
Within one's heart.
He certainly.
Certainly.
Abhadrani.
Abhadrani.
Desire to enjoy matter.
Desire to enjoy matter.
Vidunoti.
Vidunoti.
Cleanses.
Cleanses.
Surit.
Surit.
Benefactor.
Benefactor.
Satam.
Satam.
Of the truthful.
Of the truthful.
Translation and purport by Srila Prabhupada. So you can repeat after me. Sri Krishna, the personality of Godhead.
Sri Krishna, the personality of Godhead.
No, I meant you can translate it when I finish.
I see.
Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, Supersoul in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee. You can do that much.
Hriday mein sthit Paramatma roop mein Bhagavan Sri Krishna, jo bhakto ka param hiteshi hai.
Yeah, he's in everybody's heart and he's a benefactor of the truthful devotee.
और उन्होंने सर्व सर्व जीव का हृदय में स्थित हैं और उन्होंने सही सच्चे भक्त के परम मित्र हैं.
He cleanses the desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages.
जो उनका परम पूर्ण वार्ता का सुनने का
चांग
इच्छा जिनमें हृदय में प्रकट हुए हैं उनके द्वारा उन्होंने उनका हृदय हृदयस्थ सारे भौतिक इच्छा को धूल देते हैं.
His messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted.
जो उनका जो संवाद ये जो परम पवित्र है ये उनके द्वारा श्रवण और कीर्तन किया जाते हैं.
Purport by Srila Prabhupada. Messages of the personality of Godhead, Sri Krishna, are non-different from him.
Bhagavan Krishna ka bare mein Bhagavan Krishna ka katha unse abhinna hai.
Whenever therefore offenseless hearing and glorification of God are undertaken, it is to be understood that Krishna is present.
यदि अपराध रहित रहित होकर भगवान का नाम का कीर्तन और श्रवण किया जाते हैं ये समझना चाहिए कि भगवान वहां उपस्थित है.
Krishna is present there in the form of transcendental sound, which is as powerful as the Lord personally.
भगवान वहां शब्द के रूप में उपस्थित होते हैं जो भगवान का शक्ति से अभिन्न है.
Well, he said he's not different from his energy.
Yeah.
No, it is as much powerful
okay,
as the Lord himself is.
भगवान का समान शक्ति संपन्न है.
Okay. Sri Chaitanya Mahaprabhu in his Shikshastaka declares clearly that the holy name of the Lord has all the potencies of the Lord.
Shikshastaka mein Sri Chaitanya Mahaprabhu spashtikaran kiye hain ki Hari naam mein Bhagwan ka sari shakti nahi hai.
And that the Lord has endowed his innumerable names with the same potency.
Aur Bhagwan ka asankha naam mein Bhagwan ka shakti purna roop mein vartaman hai.
There is no rigid fixture of time. That means there's smarani nakala.
Yeah. Ye naam ko smaran karne mein koi samay ka hisab nahi hai.
And anyone can chant the holy name with attention and reverence at his convenience.
Aur unka suvidha ke anusar wo kahi bhi Bhagwan ka is pavitra naam ko uchcharan kar sakte hain.
The Lord is so kind to us that he can be present before us personally in the form of transcendental sound.
Bhagavan hamare par atyant kripalu hai aur jiske karan hamare samne wo pavitra naam ke roop mein vartaman hote hain.
But unfortunately we have no taste for hearing and glorifying the Lord's name and activities.
Lekin dubhagya ka baat ye hai ki Bhagavan ka pavitra lila ka shravan kirtan karne ke liye hamare hriday mein koi ichcha.
We have already discussed developing a taste for hearing and chanting the holy sound.
हम लोग पहले भगवान का पवित्र नाम का श्रवण और कीर्तन करने के इच्छा के बारे में हम चर्चा किए हैं.
It is done through the medium of service to the pure devotee of the Lord.
भगवान का शुद्ध भक्त के सेवा का माध्यम में ही ये काम किया जा सकते हैं.
So this is Sri Suta Goswami speaking at the beginning of the Bhagavatam.
Bhagavatam ka shuru mein Sri Suta Goswami ye baatein keh rahe hain.
The sages headed by Shaunaka have asked him some initial questions.
Shaunaka adi pramukh rishiyon unko shuruaat mein kuch prashna puche the.
This is an important discussion. The discussion at Naimisharanya, very important. So when you have an important conversation to have with somebody, it is important that the conversation begin in a good way. There are proper things to say that must be said. Suppose my phone rings.
जैसे हमारे फोन बज उठे.
And I pick up the phone.
मैंने फोन चालू किया.
I say hello.
मैंने हेलो कहा.
But on the other side, just silence. And then somebody says, "ये कौन है?"
और हम दूसरे उत्तर में कोई उत्तर नहीं है, बल्कि थोड़ा देर बाद उत्तर आया, "ये कौन है?"
But this man, whoever he is, I don't know who this is, he called me. Why is he asking me who I am?
जैसे हो फोन का दूसरे प्रांत में जो व्यक्ति हैं, वो किसने हमको कॉल किया है पता नहीं, पर वो हमको कॉल किए हैं.
This is not the protocol. This is not the proper way to start a conversation.
ये बातचीत शुरू करने का ये विधिवत विधि नहीं है.
I always say I'm sorry, wrong number. गलत से ये फोन किया है, and hang up.
तो मैंने अगर ऐसे हो तो मैं ये स्वीकार करता हूँ कि ये गलती हो गया, मैं तुरंत फोन को बंद कर देता हूँ.
So, Shaunaka is a great scholar in his own right. He's not an ordinary man.
Shaunaka, उनका स्थिति में उन्होंने बहुत ही विद्वत जन है.
And Suta Goswami is the son of Ramaharshana and the disciple of Vyasadeva. He's also a very exalted person.
और सुखदेव गोस्वामी जो रामकृष्ण सुता का पुत्र है और दशदेव का शिष्य सुखदेव गोस्वामी रामकृष्ण सुता का जो पुत्र है और
and disciple of yes
या व्यासदेव का शिष्य है, वो भी साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनका स्थान भी काफी उच्च था.
So you want to talk to them, you have to follow for certain standards of proper way to start a conversation.
अगर उन लोगों से आप बात करना चाहते हैं तो बातचीत करने का कुछ विधि तरीका आपको जानना चाहिए.
But these very exalted souls know how to speak to one another. They know how to ask questions and they know how to answer them.
लेकिन ये महान आत्मा ये लोग आपस में बातचीत करने का विधि तरीका जानते हैं. ये लोग जानते हैं कि एक दूसरे से कैसे प्रश्न पूछा जाए और कैसे उसका उत्तर दिया जाए.
This is the first, one of the first arts of devotional practice. How to ask the right questions. How to ask good questions.
भक्ति योग में प्राथमिक जो तरीका ये है कि कैसे सही प्रश्न पूछा जाए और कैसे इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए.
Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya. You want to learn about the absolute truth. There are three things you should do.
अगर आप परम सत्य के बारे में आप जानना चाहते हैं तो तीन चीज आपको करना पड़ेगा.
Just like if you want to make a phone call, you pick up the phone and say hello. And the man who made the phone call, who's calling, he should say not ye kon hai, but he should say who he is and what his business is and announce himself. This is the proper way to start a conversation.
जैसे आप फोन उठाए, फोन को ऑन किया और उनको रिंग किया और बोला हेलो, तो फोन का दूसरा प्रांत में जो व्यक्ति है वो जरूर नहीं कहेंगे आप कौन है, बल्कि वो आपको विस्तार में कहेंगे कि उनका प्रयोजन क्या है और वो क्या कर रहे हैं. यही बातचीत शुरू करने का विधि है.
So you want to start spiritual conversation. You want to establish, have a spiritual discussion. Then three things should be done, just like saying hello and saying what your business is.
अगर आप आध्यात्मिक बातचीत शुरू करना चाहते हैं तो तीन चीज आपको करना पड़ेगा. जैसे आप फोन उठा के कहते हैं हेलो, क्या कर रहे हो.
प्रणिपात, परिप्रश्न एंड सेवा.
प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, ये तीन वस्तु है.
First you come and offer respects.
पहले आपको उनको सम्मान देना चाहिए.
Why are the students supposed to come and bow down to the teachers in the beginning of school day? Why?
अब प्रश्न ये है कि विद्यालय में छात्र लोग क्यों उनका गुरु के पास जाके उनको प्रणाम करेंगे?
So that we won't have to pay the teachers more money. It's cheaper just to bow down to them. It doesn't cost any money.
तो ये है, इसका कारण ये है कि हम अगर उनको हर रोज प्रणाम करेंगे तो हमको उस शिक्षक को पैसा कम देना पड़ेगा.
And nowadays they're even cheaper. The students cannot reach the feet, they only touch the knees.
अभी तो और भी सस्ता हो गया क्योंकि छात्र लोग उनका शिक्षक का पैर तक पहुंच नहीं सकते, वो घुटने तक पहुंचते हैं.
But this is called pranipata.
इसको प्रणिपात कहा जाता है.
This is important, just like saying hello when you pick up the phone.
ये बहुत ही जरूरी है जैसे आप फोन उठाए और आपको बोलना पड़ रहा है ये जरूरी है कि हेलो
When the student offers respects to the teacher, he is saying, "Hello, you're the teacher. I'm the student. You talk, I listen."
जब कोई छात्र उनका शिक्षक को सम्मान देते हैं, तो छात्र ये कहते हैं कि, "Hello, आप गुरुजी हैं, मैं छात्र हूँ. आप जो कहेंगे, हम सुनेंगे."
Otherwise, both people start talking at the same time. It's confusion.
अगर हेलो बोलने के बाद दोनों आदमी एक साथ बातचीत चालू करें तो ये काफी गड़बड़ी है।
If the student tries to give instructions to the teacher, that's not proper.
अगर छात्र लोग शिक्षक को उपदेश देना शुरू करें, ये ठीक नहीं है।
So first, Pranipata, show respect.
तो पहले ये अंग है कि प्रणिपात, उनका सम्मान ज्ञापन करना चाहिए उनके प्रति।
And then second, very important.
दूसरा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है।
Ask some questions.
उनको प्रश्न पूछना चाहिए।
What do you want to hear? You have to tell what your question, what your problem is.
तो आपको आपको शिक्षक को ये बोलना चाहिए कि आप क्या सुनना चाहते हैं और आपको समस्या क्या है।
Otherwise, you said hello, but then you didn't say what you called for. What is the use? Why did you call?
अगर आप केवल हेलो बोलकर छोड़ दिया, तो आप ये नहीं बता रहे हैं आप किस लिए आप कॉल किए थे, ये आपका समस्या क्या है, ये ठीक नहीं है।
Anyway, Sutta Goswami, and rather Shonaka Rishi and the others asked some very good questions.
Shonaka Rishi aur dusra rishi ne bahut gurutvapurna kuch prashna pesh kar rahe hain.
They said, Burini buri karmani shodavyani vibhagashah atak sado to yatsaram samudutya manishaya bruhi badraya bhutanam yinatma supersedati. First question, tell us. You. There are many scriptures, and you have studied most of them. But tell us, what is the essence to be found in these scriptures?
उनका प्रथम प्रश्न ये था कि आप बहुत सारे शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन किए हैं, तो इसलिए कृपा करके हम लोगों को ये बताइए कि ये सारे शास्त्र ग्रंथ का निष्कर्ष क्या निकलते हैं?
And there are many occupational duties for man, different. Duties, but what is the most important duty for everybody?
और इस शास्त्र में बहुत सारे कर्मों का बात बताया गया है। अभी ये कृपा करके आप बताइए कि ये सारे में सबसे गुरुत्वपूर्ण क्या है?
So tell us the essence of all the scriptural instructions and the essential duty of man by which someone can become actually happy.
और बहुत सारे जो कर्मों का बारे में इस शास्त्र में बताया गया है, आप बात कृपा करके बताइए कि उसमें सबसे मुख्य कौन सा है जिसके द्वारा मानव उनका परम शांति का लाभ कर सकते हैं?
So the sages asked this and a few other questions.
और इसके साथ
very good questions.
उसके साथ साधुओं ने, मुनियों ने, ऋषियों ने उनका और भी कुछ प्रश्न पूछे जो वाकई ही बहुत गुरुत्वपूर्ण है।
That was the first chapter of the Bhagavatam. Now the answers are beginning in the second chapter.
ये प्रश्न पहले भागवतम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंध का पहले अध्याय में पाए जाते हैं और इनका उत्तर शुरू हो रहा है दूसरे अध्याय से।
Answering them, Sutta Goswami first said, "Savai pumsam paro dharmo yato bhaktir hoksaje ohoi tuki apratihata yayatma supersedati." That is the highest duty for a man. Whatever will awaken devotion for God in his heart.
In prashna ka uttar dete hue Sudha Goswami pa pehle keh rahe hain ki wahi hai manav ke liye sarvottam occupational duty is karma.
I'm sorry,
occupational duty,
or the most the highest duty for man.
Hindi
kartavya.
सबसे गुरुत्वपूर्ण कर्तव्य तो ये है जिसके पालन के द्वारा उनका हृदय में भगवान का पूर्ण जश श्रवण करने का इच्छा उदय हो।
No, love for God. First of all,
love.
Yes, devotion.
Devotion, भक्ति का उदय हो।
And then he says that yes, anything that will bring that devotion awakened in your heart is important. But actually, the best way to do that is to hear the glories of Krishna.
वास्तविकता ये है कि जो वस्तु भगवान का ये पवित्र भक्ति का हमारे हृदय में उदय करवाते हैं वो गुरुत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे गुरुत्वपूर्ण ये है कि भगवान का बारे में श्रवण करना.
I may think that the way to develop love of God in the heart is to feed poor, hungry people.
हम ये सोच सकते हैं कि दरिद्र नारायण का दरिद्र का सेवा करना, उनको खिलाना भगवान का प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न करने के लिए बहुत अच्छे विधि है.
I think that all the children in the whole state, you know, get food. That's the most important service, and that will develop love of God in the heart. I may think that.
मैं ये सोच सकता हूँ कि भारत में सारे राज्यों में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पेट भर में खाना मिल जाए, उससे हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम का उदय होगा.
Oh, it's a good thing to do, but Suta Goswami has even a better thing to do.
यह ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन Suta Goswami ने यहाँ और भी अच्छा कुछ बता रहे हैं.
No, the better, the most more effective way to awaken God in the heart is hearing and chanting about Krishna.
सबसे महत्वपूर्ण रास्ता ये है, पद्धति ये है, जिसके द्वारा हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो जाए वो भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन करना.
And here Suta Goswami is beginning to explain in detail how that process of hearing, how it works and cleans the heart.
यहाँ Suta Goswami जी ने बहुत विस्तारित वर्णन कर रहे हैं कि ये श्रवण कीर्तन के द्वारा कैसे हमारे हृदय में हम धूल मैल जो है सफा हो जाते हैं, हमारे हृदय सफा होते हैं.
श्रीनवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनो विद्यंतक्स्तो हि अभद्राणि विरुणोति सुरित्सताम. The subject of this sentence is Krishna. Krishna is the doer here.
इस जो वाक्य है इसका विषय है भगवान श्री कृष्ण. भगवान श्री कृष्ण यह करता है.
And the location of what he does is inside the heart.
उनका क्रिया का जो स्थल है वो है हमारे हृदय.
But not everybody's heart.
लेकिन ये सबका हृदय में नहीं है.
No, it's qualified. Not just any heart. Yes, it's true. Krishna is in everybody's heart.
ये सच्ची है, ये सच बात है कि कृष्ण सबका हृदय में है.
And it says here what Krishna does, Virunoti, Abhadrani. He cleans away all the dirt.
और कृष्ण वहाँ क्या करते हैं कि हमारे हृदय में जमे हुए धूल मैल.
No, don't say whose, just say the heart.
हाँ, okay. हृदय में होते हुए सारे धूल को धो डालते हैं.
But not every heart.
लेकिन सबका हृदय में ये काम नहीं करते.
Because I see many hearts are still dirty in this world.
मैंने बहुत सारे हृदय देख रहा हूँ जो इस जगत में जो अभी भी जो गंदे हैं.
Just like the fungi is supposed to clean the street.
जैसे फंगी जो है वो रास्ते सफा करते हैं.
If they don't do their job, you may not think they're dirty people, but they do a very important job. If they don't do it, the streets will be dirty.
हम लोग ये सोच सकते हैं कि वो लोग बहुत गंदे आदमी हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है वो लोग बहुत गुरुत्वपूर्ण काम कर रहे हैं. अगर वो लोग काम करना बंद कर दे तो सारे रास्ता गंदा हो जाएगी.
4 years ago, 3 years ago in Govardhan, the bungies went on strike because they were not paid enough money.
3 साल पहले गोवर्धन में सारे भंगी लोग हड़ताल कर दिया क्योंकि उनको काफी पैसा नहीं दिया जा रहा.
They did not clean the streets for 6 months.
6 महीना वो रास्ता सफा नहीं किया.
And of course, the housewives, they will not go out in the street. They'll clean their house, but they won't go out in the street to clean. So finally it got so terrible, there was an editorial in the Delhi newspaper, in the Hindustani Times, complaining about the dirty streets in Govardhan. That was too embarrassing. Finally, the Gram Panchayat did something and settled the strike. It was so embarrassing.
ये इतना खराब था कि ग्राम पंचायत वो लोग फिर ये हड़ताल को समाधान करने के लिए कुछ किया.
Because it's important. The cleaning has to be done.
क्योंकि ये बहुत जरूरी है, सफाई का काम करना होना चाहिए.
So Krishna is doing that cleaning.
और कृष्ण ये सफाई का काम कर रहा है.
But is he doing a bad job? Because I see many hearts are still dirty.
ये उनका काम क्या सही ढंग से काम नहीं क्या कर रहे हैं मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे हृदय हैं जो गंदगी में भरे हैं
is he on strike
तो वो तो कृष्णा क्या हड़ताल कर दिया
he wants more money
कृष्णा क्या जो ना पैसा चाहते हैं
no the answer is explained here
तो इनका उत्तर क्या है यही यहाँ व्याख्या किया गया है
Krishna is Surit Satam. He is a special friend of the person who are saintly.
Krishna is Surit Satam. Krishna un logon ki dost hai jo sadhu bhav mano bhav sampann hai.
Samap sarveshu bhuteshu. I'm equal to everyone, Krishna says in the Gita.
Bhagavan Bhagavad Gita mein kahe hai ki main sare ke prati saman drishti sampann hu.
Namai dvesho asti na priyaha. Nobody is my friend and nobody is my enemy.
Aur main mera koi dost bhi nahi hai, mera koi shatru bhi nahi hai.
Ye bhajanti tu mam bhaktya mai te teshu chapyam. But those who worship me with devotion, I'm in their heart and they're in my heart.
Jo log, lekin jo log bhakti yog ke dwara mera bhajan karte hain, main unka hriday mein hu aur wo mera hriday mein hai.
This is not unfair.
Ye to koi galat nahi hai.
No. It's unequal. That means I give too much to you and not enough to him.
Yeah.
Anyway, it doesn't mean that Krishna.
Saman hai.
Yeah, is not saman. Is not equal. I mean, it doesn't mean that Krishna is not being equal. No, if he gives special favor to his devotees, then maybe the other people will want to become devotees also, to get some special favor. So, here he doesn't clean everybody's heart. This verse says, Shrinvatam, Satam. For the devotees who are listening, if you listen, then Krishna comes and cleans your heart.
वो भगवान कृष्ण सबके हृदय सफा नहीं करते यह बताया जा रहा है कि जो लोग भगवान कृष्ण के कथा का श्रवण करते हैं भगवान उनका हृदय को ही सफा करते हैं
Just like if you paid the cleaning the safai wali 10 or 20 rupees at the end of the month then she'll clean next month
अगर आप जो भंगी है उनको 10-20 रुपया महीने के अंत में देंगे तभी वो आपका कचरे साफ करेंगे
Otherwise the garbage will be in front of your house next month
तो अगर नहीं देंगे तो गंदगी आपके घर के सामने पड़ा रहेगा
सो इफ यू वांट कृष्ण टू क्लीन योर हार्ट यू हैव टू लिसन टू हिज कथा
अगर आप चाहते हैं कि भगवान कृष्ण आपका हृदय को साफ करे तो आपको भगवान कृष्ण की कथा सुनना पड़ेगा
बिकॉज़ ही इज योर फ्रेंड
क्योंकि वो आपका दोस्त है
ही डजंट वांट यू टू बी इन इग्नोरेंस
वो नहीं चाहते कि आप अज्ञान में डूबे हुए हो
दैट यू बी अनहैप्पी
और इसके द्वारा आप
And the easiest and most effective way to clean out all the dirt in the heart is simply the Shravanam and Kirtanam of Krishna.
और सबसे सरल और सहज उपाय है कि भगवान कृष्ण का बारे में श्रवण और कीर्तन करना.
It's so easy. There is no need to do anything else but hear and chant the glories of Krishna.
ये बहुत सरल है और इतना सरल है कि दूसरा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा केवल भगवान का वर्ण में श्रवण और कीर्तन करना पड़ेगा
But we may say, no, I have so many other things I have to do. How do you say I don't have to do them? Now, if I don't do them, so much trouble will be there.
आप अगर आप कह सकते हो नहीं हमको बहुत सारे काम करना है दूसरा भी कुछ करना है आप कैसे ये कह सकते हैं दूसरा चीज नहीं करें तो जिसको करके हम भी कुछ लाभ उठा सकते हैं
Well, you're thinking like that. That if I don't work, my family won't eat. They'll live in the street.
आप ये सोच सकते हैं कि मैं अगर काम नहीं करूंगा, तो मेरा परिवार भूखा रहेगा, वो लोग बेकार हो जाएगा.
That's only true if you don't have complete attraction to hearing and chanting.
ये सत्य है तब कि जब आपका भगवान का नाम श्रवण और कीर्तन में बिल्कुल रुचि नहीं
If you have very deep ruchi for hearing and chanting, you don't have to do any work except for hearing and chanting.
अगर भगवान का नाम श्रवण और कीर्तन करने का आपका गहरी आसक्ति है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा.
Example, story of Chaitanya Mahaprabhu and his devotee Srivas Thakur.
हम लोग उदाहरण के स्वरूप भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त श्रीवास ठाकुर का.
This is described in the Chaitanya Bhagavat of Vrindavan Das Thakur. One day, Lord Chaitanya was in the house of Srivas. This is where every night they would do kirtan, in the house of Srivas Thakur. And Srivas had a big household. He had three brothers. And they had their wives and children and their servants. It was a big house.
Srivas Thakur ka teen bhai aur unka patniya aur bacche lekar bade ek parivar the.
And once Lord Chaitanya said something to him jokingly. I see you have such a big household, but I never see you doing any work. You have no job.
Ek din mazak karte hue Sri Chaitanya Mahaprabhu unko kahe, Shiva, main to dekh raha hu tumhare parivar itna bade ho.
What is your secret? Tell me. And Srivas Thakur didn't say, he just clapped his hands three times. Like that. Lord Chaitanya said, what does that mean? This means, simple, that if somehow we don't get some food in the house for 3 days, then I will jump into the Ganga and drown myself.
So, Srivas Thakur ulta prashna ka jawab diya. Agar hum 3 din dekhenge, 3 din agar hamare ghar pe koi khana nahi hai, to uske baad hum Ganga mein kud jayenge.
I just trust Krishna.
Kyunki main Krishna ke upar sab Krishna ke prati sampurna samarpit hu.
And so far I haven't had to jump in the Ganga.
Isliye main kabhi bhi humko Ganga mein kudna nahi pada.
This is perfect, Grihastha. We cannot imitate that. But if you have such faith as Srivas Thakur, you don't have to do any other work. Well, not perfect, perfect.
Perfect means paripurna.
Sabse Shrestha.
Yeah, paripurna Grihastha. Usko hum logo ko dakal nahi karna chahiye.
Krishna told Uddhava, Tavat karmani kurvita nan nirvidyeta yavata matkata shravanena va Shravani Makata Shravanadalva Yavan Shradana Jayate. Only you have to work for that long until you lose your interest in it. It's because you want to work that you're working. And you may say, what do you mean? I don't want to work, I have to work. No, no, what that means, until you get, Krishna told Uddhava, until you get real strong taste for hearing and chanting and about me, until then you have to do material work. So, this ISKCON is a very radical organization. We are against work.
Radical.
Yes, but you explain why? Because we don't like work. Yeah. We want everyone to stop working.
Yeah, I say.
Our work is simply to hear and chant about Krishna. And everything else we do, even making money, is just to promote that we and everybody else hear and chant about Krishna. Even making money. So that we hear and chant more about Krishna. And everybody in the world hears and chants about Krishna. That's the purpose of everything we do.
So, hum log shravan kirtan karte hain aur sare vishwa mein samast log shravan kirtan karte hain to yahi hai hum log jo kuch karte hain unka uddeshya yahi hai.
Okay, so this is the process. We can continue in the next days reading the further description by Suta Goswami how hearing and chanting has its effect in the heart.
Aane wala dinon mein हम ये हम आलोचना करेंगे कि श्रवण कीर्तन के माध्यम में हमारे कैसे लाभ पहुंच सकते हैं.
Okay, are there any questions? Yes, please.
You said that one should not, the student should not instruct the teacher. It's not very good.
Yes.
I found myself in one of the class. I found myself sometimes in the classes instructing the teacher because I don't like the way he teaches me.
Okay. Yes.
How can I become free from this?
आप बोले हैं आप बताए हैं प्रभु जी कि टीचर को शिक्षक को उपदेश नहीं देना चाहिए. तो कभी कभी मैं ये करता हूँ क्योंकि कभी कोई कोई टीचर शिक्षक को शिक्षा पद्धति प्रणाली हमको अच्छा नहीं लगता.
Well, sometimes you may have to tell that. Sometimes, you know, the whole class is a failure. You want to help the teacher become a better teacher, but you don't tell it in the classroom, in front of the other students. You speak to him privately and very, very respectfully. Not in front of everybody in the class.
हाँ ये जरूर है. ये कभी कभी करना ही पड़ता है क्योंकि अगर हम देखें कि कोई शिक्षक जो उनका क्लास कक्षा ले रहे हैं और कक्षा के परिणाम बेकार गए तो सबके सामने स्टूडेंट के सामने बोलना नहीं चाहिए बल्कि अलग जाके उनको व्यक्तिगत रूप में उनको समझाना चाहिए कि जिसके द्वारा वो उनका शिक्षण प्रणाली का परिवर्तन ला सके.
Even when the student, when the teacher has to give a strong criticism against the student, also that's better done in private, not make embarrass him in front of everybody. Even when the teacher is speaking to the student, you shouldn't embarrass him in front of everybody by chastising very strongly. Do it in private if you have to do it.
अगर किसी शिक्षक को कोई
just a teacher, what to speak of the student instructing, even when the teacher instructs the student.
कोई छात्र का आलोचना करना चाहते हैं, बहुत कड़क आलोचना करना चाहते हैं, वो भी सबके सामने नहीं करना चाहिए. उस छात्र को अलग व्यक्तिगत रूप में बुला के उनका बोलना चाहिए. अगर शिक्षक छात्र के ऊपर ऐसे भाव पोषण करे तो एक अब हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि एक छात्र को कैसे शिक्षक के साथ बातचीत करने में सावधान होना चाहिए.
Anyway, when you have to say something to the teacher to correct him, then you have to do it very nicely, carefully.
ठीक है, आप कोई शिक्षक को कुछ बताएंगे लेकिन आपको बहुत सावधान होना पड़ेगा.
Okay.
Thank you.
Yeah, sure. Yes, ma'am.
Like suppose we meet the person who is at least little interested in Krishna consciousness and even can start to practice. So we have a conversation with him and he asks for our advice how to suppose telling to such a person that like this is very straightforward way that only we should surrender to Krishna complete, although maybe such a person is not ready.
Yes.
For this we can see maybe attachment. So is it always right to instruct or to tell to people like just to complete the surrender or to
yes
like to, there okay. is also that Varnashram
yes can you translate?
हम लोग कभी कभी देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति हैं कि जो भगवान के प्रति समर्पण करने के लिए पूर्ण रूप में राजी नहीं है तो उनको हम लोग क्या बहुत जोरदार रूप में पुश
बोलना चाहिए
बोल सकते हैं या उनको धीरे धीरे समझा सकते हैं ठीक है वर्णाश्रम धर्म है उसको पालन कर सकते हैं क्या करें उस
यू हैव टू जज बाय द रिजल्ट्स
आपको फल का ऊपर विचार करना फल के द्वारा विचार करना चाहिए.
You may speak very frankly and strongly, and it may sound very good, and you may be proud of yourself that you're speaking so strongly. But if the result is the person rejects what you say, then it's a failure. If he doesn't accept it, if he doesn't do what you ask him, then what's the use? Then you're just something to be proud of, but you haven't succeeded.
आप बहुत गर्व अनुभव कर सकते हैं कि हाँ मैं ये व्यक्ति को इतना कड़क रूप से बोला लेकिन बाद में क्या हुआ फलस्वरूप देखा गया कि वो व्यक्ति आपका उपदेश पालन नहीं किया तो आप इतना कड़क रूप में और जोरदार रूप में उनको ये बात कहा लेकिन उनका फल क्या हुआ कुछ नहीं हुआ.
So you have to use your intelligence and understand how much you can push somebody. Push him a little, but not too much, so he doesn't run away.
आपको बुद्धि के द्वारा ये समझना चाहिए कि दूसरे को कितना तक आप जोर डाल सकते हो दूसरे के ऊपर. आप इतना जोर मत डालिए कि उसको वहाँ से भागना पड़े.
But if you're too soft, if you just tell him, be a good man, you know, do some puja, give some charity, that's not good enough.
तो अगर आप बहुत नरम रूप से कहेंगे ठीक है तुम अच्छा बनो पूजा करो कुछ दान करो ये क्या काफी है नहीं है.
Yes, give me some bakshis, I'll give you blessings and that's all.
मेरे को कुछ बख्शीश दो मैं तुमको बदले में आशीर्वाद देंगे.
No, that's not, that's failing to tell enough. That's not enough. Prabhupada said, your preaching is successful if you can make someone surrender like Arjuna surrendered. Then that's successful preaching.
Srila Prabhupada ye kahe hain ki aapka preaching, aapka prachar, tab safal prachar mana jayega jab aap jisko prachar kar rahe hain, wo Arjuna jaisa samarpit vyakti ban jaye.
So to decide how strongly to speak, you have to use all of your intelligence and then pray to Krishna for inspiration.
तो ये वास्तविक ये हम लोगों को समझना चाहिए कि जितना भी जोरदार से आप बले क्यों ना हो कि अगर कृष्ण का बात ये है कि कृष्ण के पास आपको प्रार्थना करना चाहिए कि
And also pray to ground. Pray that he gives you inspiration. What to do?
वो आपको हृदय में अनुप्रेरणा दे कि क्या करना चाहिए.
Okay, thank you. Hare Krishna. Anything else? Yes, Ramabhu.
This, what we discussed right now, Prabhu, this, what we say, the capability of seeing and judging people and giving.
Yes.
Is this pre-recorded in human beings that sometimes we see some are very good preachers, some are not so great preachers? Even after trying, according to your experience, how much can a person change seeing and, like you said, make preachers?
No, you can be, a person can be trained to become a good preacher. It's not just only innate talent. It's not just natural preacher and you cannot make somebody a preacher. Almost any serious devotee can be made into a good preacher.
Prabhuji, your question is this, that sometimes we see that some bhakt acha bahut preaching karte hain, log ko prabhavit karte hain, wo kya unka janmagat, unka igun unme hai? प्रभुजी उत्तर देते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है. कोई जो सीरियस भक्त है वो उनको अच्छा ट्रेनिंग के द्वारा अच्छा प्रचारक बना जा सकते हैं.
It requires the training of doing a lot of careful hearing before you speak. You listen, and also then you go out and practice preaching and you become better. So hearing and practice, this makes a good preacher.
प्रचारक बनने के पहले उनको ये शिक्षा दिया जाते हैं कि प्रभुत्व रूप में कैसे बहुत ढंग से श्रवण किया जाए, और जब वो श्रवण का काम ठीक रूप से करते हैं तो उसको सुयोग दिया जाते हैं कि जो सुने हैं उसको प्रयोग करने में. तो वैसे वो अच्छा प्रचारक बन सकते हैं.
I'll add another thing, that you should practice what you preach. You should you know, hear, but follow the instructions you hear. And follow very seriously, then you can become a strong preacher.
मैंने इसके साथ और एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ कि केवल आप प्रचार नहीं करेंगे, आप जो सुने हैं उसको सही सही रूप में आचरण करना पड़ेगा.
Should have a good sadhana, chant Hare Krishna very attentively and follow the rules very properly.
तो आपको साधना बहुत कड़क होना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप बहुत ढंग से करना चाहिए और उसके द्वारा आप धीरे धीरे प्रचार कर सकते.
Then any devotee can be an effective preacher.
और उसके द्वारा ही कोई भी व्यक्ति एक सफल प्रचारक का रूप में परिवर्तित.
Maybe he's not a fancy speaker, but anyway, the principle is you tell what you know, not what you don't know, and you tell it however you can tell it according to your ability.
तो ये ऐसा भी नहीं हो सकते कि प्रचारक बहुत ही अच्छा वक्ता हो, लेकिन आपको ये सरल रूप में कहना चाहिए कि आप क्या जानते हैं नहीं जानते हैं, और उनके द्वारा ही आप धीरे धीरे बन सकते.
Oh, I don't know if you got that right. You should speak what you have realized. Don't speak things above your own head.
आपको ये कहना चाहिए आप जो अनुभव किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आप जो अनुभव नहीं किए हैं.
And if you don't know how to speak in very complicated language, then speak in simple language and simple ideas. Just speak the way you can speak.
और आपको ये भाषा के रूप में कोई जटिल भाषा बोलना नहीं चाहिए, वो सरल भाषा में बोलना चाहिए.
Simple ideas, simple language is good enough.
सरल भाव और सरल भाषा प्रचार के लिए बड़े अच्छे माध्यम है.
If you can speak very fluently, okay. But otherwise, you just speak the way you can speak.
अगर आप बहुत क्या कहते हैं इसको प्रबल रूप में कह सकते हैं, ठीक है. अगर नहीं कह सकते हैं, आप जैसे कह सकते हैं वैसे कहिए.
If you are sincere, then when you open your mouth, Krishna will talk.
आप अगर sincere हैं, गंभीर हैं, तो आप जब मुंह खोलेंगे, कृष्णा आपका अंदर से आपका बात through you आपसे बात.
Krishna will talk.
Yeah, Krishna बात करेंगे.
Okay, thank you. Okay, anything else?
I just read in my book of Ram Sudar Ji Maharaj, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, etc. That was the title, and in which he says like, if you learn something from someone, he will be a guru. It could be a child, it could be some very good master, it could be excellent leader, whatever it is. And in this world, we have to be very, very cautious about, you know, how to surrender on to guru and how to render service to guru, what should be the qualifications of a guru. And in which again he says, Krishna Mande Jagat Guru. In that shloka he says, so he is the only master to whom you have to surrender on to. So I would like to know whether in everyone's life is there any strong need to take initiation from a guru or surrender on to the gurus whom we find in this world. So
are you doubting that? You're saying that maybe we shouldn't have to take a guru?
No, I'm not. I would like to know, I mean, whether we have to take an initiation to proceed on the progress on this spiritual path.
Yeah, okay. Can you translate?
Huh. तो हम एक मतलब देखे हैं कि वहाँ बताया गया है कि आप जिसके पास हो, कोई भी अगर हो, कि वो छात्र हो, वो टीचर हो, कोई भी हो, रामसुदास का उन्होंने कहे कि कोई भी व्यक्ति आपका गुरु हो सकते हैं, जिसके पास आप शिक्षा ले रहे हैं वही आपका गुरु. तो मेरा प्रश्न ये है कि विधिवत दीक्षा ग्रहण करने का और गुरु ग्रहण करने का जरूरत है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए.
So many people are saying Krishna Vandang Jagat Guru, but who has real devotion for Krishna? Who has love for Krishna? The words are cheap. Anybody can say them.
Both are लोग कहते हैं कृष्ण बंदे जगत गुरु. अगर हम लोग देखना चाहिए कि कृष्ण का प्रति किसका हृदय, उन लोगों का हृदय में भक्ति है क्या नहीं? कहने का बात तो हम कह दिया.
So, what is the purpose of initiation anyway? What is it for?
अच्छा, दीक्षा का प्रयोजन क्या है? किस लिए दीक्षा है?
It is a formality. It is a contract.
ये है एक
contract.
Contract. ये एक
contract.
ये एक
व्यवस्था, नियम.
हाँ, ये एक नियम है. नियम है. नियम नहीं. ये एक व्यवस्था है.
Anyway, like you're going to buy a house. You're going to buy the house from your friend. Maybe you can think, we'll just do it verbally. We won't have any contract. But this is foolish. You're dealing with, you know, 50 lakhs of rupees, and you're not going to have a contract? That's foolish, even you're dealing with your friend.
जैसे आप एक आपका दोस्त से एक घर खरीदने गए हैं, घर का कीमत है 50 लाख रुपया, तो आप मुंह से बात करके 50 लाख रुपया उनको दे दिया, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ये अगर ऐसे व्यवस्था करना हो तो ये एक मूर्खता है.
That's the best way to ruin the friendship, ruin your friendship, is to do business like that.
और अगर आप ऐसे बिजनेस करोगे तो आपका ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप दोनों का आपसी जो दोस्ती है उनको खत्म करने का.
So if you want to do business with Krishna, better to have a proper contract. You want Krishna to be your friend and not no mistaken on ideas, then you should sign a contract. You know, this is initiation, formal contract. Krishna, I sign my life away. You know, I'm your slave. And I'm the servant of my spiritual master. This is what the disciple agrees at initiation.
So, diksha is a contract. Krishna, I'm your dasu. And I'm your charvasa.
For life, slave.
Gulam,
I'm your slave.
And
the guru, he's also signing. I promise to take this soul back to Krishna.
और गुरु भी साइन करते हैं कि मैं इस जीवात्मा को कृष्ण के पास वापस ले जाऊंगा।
If you really mean, I want to worship Krishna, one day Krishna Jagat Guru, then why can't you sign the contract? You know, you really have 50 lakhs? You want the house? Okay, just sign the paper. If you're not gonna willing to sign it, what's the problem? Why can't you just sign the piece of paper?
Okay, आप अगर मानते हो कि कृष्ण वंदन जगत गुरु तो वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने का क्यों नहीं करते हो? अगर आप 20 लाख रुपया से घर खरीदे हैं तो एक छोटा सा कागज में साइन करने में क्या दिक्कत है?
You want to actually be Krishna's devotee? Can't you give one lifetime? You know, then what is the problem? Why not initiation? Why not make a commitment?
तो अगर आप कृष्ण का दास बनना चाहते हो, आप क्यों कृष्ण का एक जीवन नहीं ले सकते? एक कमिटमेंट करने के लिए क्या दिक्कत है?
So initiation means I'm serious. I'm ready to sign my name.
दीक्षा का अर्थ यह है कि मैं सीरियस हूँ, मैं गंभीर हूँ, मैं वह दस्तखत करूँगा.
It's just the way, the proper way to work with Krishna. It's the proper thing to do.
और यह है भगवान कृष्ण के साथ डीलिंग करने के लिए तरीका.
You can tell Krishna, you know, I want to go back to Godhead, but I don't want to sign any paper. Maybe Krishna will give you a chance, even without a contract. But that's taking a risk.
तो आप ये कह सकते हो, हाँ कृष्ण, हम तो आपके भगवत में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूँगा. हो सकता है कृष्ण आपको एक सुयोग दे सकते हैं, पर वो बहुत रिस्की होगा.
It's some risk. The contract is there, no risk.
ये तो बहुत रिस्की होगा, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कोई रिस्क नहीं है.
Okay. Okay. Yes, please.
Krishna punishes a rebellious soul, and worst punishment is he removes his faith in him.
Yes.
Then, unless Krishna's causeless mercy is there on conditioned soul, they cannot develop faith in him.
Yes.
Then, how can we help one who has lost faith?
Yes.
It is Krishna's desire that he has removed. But if by punishing that soul, then what we can do? I mean, how can...
Yes. Yes. Can you say
the first one?
Krishna punishes a rebellious soul.
What do you say in Hindi?
Krishna, aise shiksha dete hain ek jivatma jo usse mud jati hai. तो ऐसे एक शिक्षा देता है कि वो विश्वास छीन लेता है, अपने पर जो विश्वास रहता है वो रिमूव करता है. तो कृष्ण की दया के बिना बद्रीनाथ उस पर विश्वास बढ़ा नहीं सकते. तो हम कैसे विश्वास बढ़ा सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं बद्रीनाथ की, ताकि वो जो जब कृष्ण की इच्छा है कि
This is the skill that the strong devotees have, is that they know how to repair damaged faith. There are many ways to repair damaged faith. It is better to use gentle ways. Just like a man who's in pain, you don't want to create more pain. You treat him gently and give him treatment. You just give him some prasadam. Let him hear the kirtan. Let him meet the nice devotees. Give him a book. Not, don't hit him, don't beat him on the head.
उनको ऐसा करना चाहिए कि उनको प्रसाद दीजिए उनको अच्छे अच्छे भक्तों से उनको मिलाइए उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि कड़क रूप में उनको आघात दिया जाए
If he's not very hard-hearted, then he will respond to kind treatment and his faith can be repaired.
अगर उनका हृदय सचमुच कठोर ना हो तो ये आपके व्यवहार के कारण व्यवहार से वो उत्तर देंगे
This is the special power that Krishna gives to his devotees. To reclaim the devotees who have the people who have lost their faith and to give them back their faith.
और ये शक्ति
Krishna gives the devotees that power.
भगवान भक्तों को देते हैं कि जिसके द्वारा वो विश्वास पाए हुए व्यक्ति को फिर कृष्ण भगवान को विश्वास उनको हृदय में सुदृढ़ कर सके.
Krishna may take away the faith, but he's always ready to give it back also.
कृष्ण हो सकता है उनका आत्मविश्वास उन्होंने चुरा ले सकते हैं लेकिन कृष्ण उनको वापस देने में भी राजी है
Just like the father takes something away from the son, but he's hiding it. He's ready to give it back. He didn't throw it away. He's just keeping it hidden someplace.
जैसे पिता पुत्रों से कुछ चीज ले लेते हैं, छुपा देते हैं, ऐसे नहीं कि वो लेके कहीं फेंक देते हैं। उन्होंने पुत्रों को वो वापस देने के लिए भी राजी हैं।
If a devotee, yesterday we were discussing, if a pure devotee recommends, then only Krishna, otherwise Krishna is not happy with that soul.
Yes, but the pure devotees are always recommending, always asking Krishna to save the
conditions. But when that person is, that the soul is not willing to surrender, he has lost faith, then how it is possible? Then pure devotee will also not, devotee, how will
he? The pure devotees don't care, faith or no faith. Chaitanya Mahaprabhu doesn't care. Chaitanya Mahaprabhu doesn't care you have faith or you don't have faith. He'll try to give you Krishna's mercy even if you don't have faith. That is the special mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Yes. So we have the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. We have no faith, but still is being forced on us.
Chaitanya Mahaprabhu ye nahi dekhte jiska vishwas hai ya nahi hai. Chaitanya Mahaprabhu, hum logon ka vishwas hai nahi, kyun Chaitanya Mahaprabhu fir hum logon ko push force kar rahe hain. So
the people without faith are also being given the chance to surrender, the chance to come back to Krishna.
जिस लोगों का जिसका हृदय में विश्वास नहीं है, उन लोगों को भी सुयोग कर देना चाहिए कि जिसके कारण वो भगवान कृष्ण के पास वापस आ सके.
We have public programs. We do chanting in the street. We offer prasadam and invite everybody to come take darshan, listen to the pravachan, join the kirtan. We don't stand by the door with some meter to measure how much faith you have before we let you in.
हम लोग public program करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, आरती करते हैं, और इसके इससे क्या बहुत सारे लोग आते हैं. हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि मीटर लेकर खड़ा हो जाए किसका हृदय में कितना विश्वास है. ऐसा नहीं देखते.
It's not that we will not allow give the mantra to anybody who does not have faith. We'll give the mantra to everybody. We chant it publicly. We're not keeping it secret.
ऐसा नहीं है कि हम हमारे मंत्र जिसके हृदय में विश्वास नहीं है हमको नहीं देंगे बल्कि हम मंत्र उच्चारण सबके अंदर करते हैं.
We're chanting in public so that everybody, even the people with no faith, will hear it.
हम लोग सब
This is Chaitanya Mahaprabhu giving his mercy to even the people with no faith.
हम लोग जन समुदाय के अंदर ये हरिनाम का कीर्तन करते हैं इसलिए कि जिन लोग का हृदय में विश्वास नहीं है वो लोग भी ये हरिनाम का श्रवण करें और यही श्री चैतन्य महाप्रभु ये तरीका श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोग को दिए हैं
हरे कृष्ण सो स्टॉप हियर थैंक यू ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम की जय
श्री श्रीमद् भागवतम की जय